अगली सुबह कैंपस का ग्राउंड था। प्रियल को पूरी रात एक्साइटमेंट के मारे ठीक से नींद नहीं आई थी। अंजू और प्रांजल से भी उसने इस बारे में बात की, पर बात नहीं हो सकी थी। अगली सुबह वो जल्दी उठकर जिनी के बताए अनुसार तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद उसने खुद को कई बार आईने में देखा था। इसके बाद वो कैंपस के ग्राउंड में पहुंच गई थी। प्रियल ने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहनी थी। उसने अपने बाल हेलमेट में कवर कर लिए थे। कैंपस में आरोही ने उसे देखा और वो उसे देखकर उसकी तरफ आई थी। आरोही हैरान होते हुए बोली, आर यू मैड प्रियल? ये क्या पहना है? पता भी नहीं चल रहा लड़का हो या लड़की, जबकि यहाँ की बाकी की लड़कियों को देखो, वो सब कितने अच्छे से रेडी होकर आई हैं। ऐसे लग रहा है यहाँ पर कोई रैंप वॉक होने वाला है, जबकि तुम्हारा बिल्कुल बेकार लग रहा है। प्रियल ये सुनकर मायूस हो गई थी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो गया था। जल्द ही जिनी ग्राउंड में आई थी, जिसके आते ही सब लाइन बनाकर खड़े हो गए थे। सब खुश दिखाई दे रहे थे मगर सिवाय प्रियल के। वो बाकियों की तुलना में कम सुंदर दिख रही है वाली थिंकिंग का शिकार हो गई थी और लगातार वो फंसती जा रही थी। जिनी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सारी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग फील्ड में जाएंगे और वहाँ वार्म अप करेंगे। हमारे कैप्टन आज एक दिन की ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आएंगे, लेकिन उन्हें आने में अभी वक्त लगेगा। जब आएंगे तब आप सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से हट गई थी, जिसके बाद सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग फील्ड के लिए निकल गए थे। लेकिन प्रियल अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। जिनी ने उसकी तरफ देखा तो वो उसकी हालत समझ गई थी। वो उसके पास आई और बोली, तुम मुझ पर भरोसा रखो, जो भी होगा वो सही होगा। मैं निक को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है उसे क्या पसंद है क्या नहीं। मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं अपने वादे को पूरी तरह से निभा कर रहूँगी। बस तुम अपना भरोसा मुझ पर से मत हटाना। उसने प्रियल के कंधे पर हाथ फेरा था, जिससे प्रियल को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था। प्रियल ने एक मुस्कान दी, आप जो भी कर रही हैं मैं ये शटअप, अब इसके आगे एक भी वर्ड मत बोलना। चलो जाओ और जाकर वार्म अप करो। प्रियल ने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई थी। प्रियल वार्म अप कर रही थी मगर उसका ध्यान वार्म अप पर कम और दरवाजे पर ज़्यादा था। वो ट्रेनिंग फील्ड में आने वाले दरवाजे के पास से ही कैंपस के दरवाजे को देख रही थी। तभी दरवाजे पर एक लंबी काले रंग की गाड़ी आकर रुकी थी और उसकी दिल की धड़कन धड़कने लगी थी। वो वार्म अप करते करते रुक गई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और निक और एम्मा निकलकर बाहर आए थे। प्रियल निक को देखते ही उसे देखती ही रह गई थी। निक ने व्हाइट कलर की शर्ट और पैंट पहन रखी थी, जिसमें शर्ट उसकी पूरी बॉडी से चिपकी हुई थी। निक ने हल्के से अपने बालों में हाथ फेरा और फिर गाड़ी से जैकेट निकालकर उसे पहना था। निक की इस अदा ने प्रियल की जान ही ले ली थी। निक जैकेट को पहनने के बाद अपनी बाजुएं संभालता हुआ अंदर की ओर आने लगा था, जहां प्रियल घबराकर अपनी जगह पर घूमकर दूसरी ओर देखने लगी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निक की आंखों में आंखें मिला सके। निक उसके पास से गुजरा तो प्रियल उसके लगाए हुए परफ्यूम की खुशबू में खो गई थी। निक एम्मा के साथ हल्की फुल्की बातों में व्यस्त था, जिसकी वजह से उसका ध्यान प्रियल पर बिल्कुल भी नहीं गया था। निक वहां से निकल गया था, जिसके बाद प्रियल ने मुड़कर उसे देखा था। निक और एम्मा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे थे। वहां निक ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम कैप्टन निक। ट्रेनिंग के बाद आप सब मेरे अंडर ही काम करोगे। एम्मा ने इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दिया, हेलो आई एम एम्मा, मैं फील्ड कैप्टन हूँ। फिर निक बोला, मुझे अभी 2 घंटे बाद अथॉरिटी मीटिंग अटेंड करनी है, तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए ट्रेनिंग का प्रोग्राम अभी शुरू करते हैं। ये कहकर उसने अपना सीना फुलाया और बिल्कुल सावधान होते हुए कैप्टन वाले अंदाज में कहा, अटेंशन स्टूडेंट्स। इतने में प्रियल भी वहां आकर खड़ी हो गई थी। वो सबसे पीछे खड़ी हुई थी। एक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है चौकन्ना रहना। कौन सा खतरा कहाँ से या कौन सी डायरेक्शन से आएगा, ये हम कभी पहले से पता नहीं चलता। इसीलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है और हर तरफ से मानना पड़ता है यहाँ खतरा है। आज मैं आपको जो भी लेसन सिखाऊंगा वो चौकन्ना रहने का ही होगा। सबके सब आउटडोर फील्ड में जाएं और वहां नकली तीरों के बीच अपनी पोजिशन संभालें। वहां आप पर 4 अलग अलग डायरेक्शन से बिना किसी सीक्वेंस के डुप्लीकेट तीर छोड़े जाएंगे और आपको उनसे बचना होगा। सभी स्टूडेंट्स ने ये सुना और आउटडोर फील्ड की ओर जाने लगे थे। कुल 3 ऐसे फील्ड थे जहां पर अलग अलग समय में 3 स्टूडेंट एक साथ इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते थे। जिनी, एम्मा और निक बारी बारी अलग अलग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाने लगे थे। प्रियल इस दौरान निक के पास आने की बजाय उससे बचने की कोशिश कर रही थी। वो कतार में सबसे पीछे खड़ी थी और खुद को पूरी तरह से छुपा रही थी। अपनी इस कोशिश में उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि उसके आगे की लाइन खत्म हो रही है और वो थोड़ी देर बाद अपनी लाइन में इकलौती बची स्टूडेंट हो जाएगी। इतने में निक का ध्यान प्रियल और उसके आगे खड़े कुछ स्टूडेंट्स पर गया और वो उनकी ओर बढ़ा। सभी स्टूडेंट्स के हाथ में एक लकड़ी की ढाल थी, जिसका इस्तेमाल तीरों से बचने के लिए किया जा रहा था। प्रियल के आगे के स्टूडेंट्स ने तो उसे ढंग से पकड़ रखा था, मगर प्रियल ने नहीं। निक प्रियल के पास पहुंचा और उसकी कलाई को पकड़कर ऊपर कर ढाल सही करता हुआ बोला, हे होल्ड लाइक दिस बॉय। इतने में ही प्रियल की धड़कन फिर से बढ़ गई थी। निक ने आगे के स्टूडेंट्स की पीठ पर थपकी मारकर उन्हें आगे जाने का इशारा किया था, जिसके बाद वो भी आगे चला गया था। वहीं प्रियल अपनी धड़कनों को संभालते हुए पीछे खड़ी रही थी। निक ने उसे बॉय कहा था क्योंकि अपने लुक की वजह से वो किसी लड़के की तरह ही दिख रही थी। निक आगे जाकर पीछे मुड़ा और प्रियल को देखता हुआ बोला, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल मूवमेंट निकालना पड़ेगा क्या? तुम भी आगे आओ। प्रियल फौरन आगे आ गई थी। निक ठीक उसके बगल में खड़ा था और वो बीच बीच में तिरछी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। निक की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से उसे सावधान की पोजीशन में खड़ा रहना पड़ रहा था। दिल की धड़कन अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी और वो पूरी तरह से घबराई हुई थी। आगे के दो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस पूरी हुई और निक ने प्रियल की पीठ पर हाथ रखे उसे आगे जाने के लिए कहा था। निक ने जैसे ही प्रियल की पीठ पर हाथ रखा उसकी आंख बंद हो गई थी, जिसके बाद वो आगे की ओर खिसक गई थी। उसने खुद को संभाला और आउटडोर फील्ड में जाकर खड़ी हो गई थी। निक उसके सामने ही खड़ा था और उसे ही देख रहा था, जिसकी वजह से वो घबराई हुई थी और उसका ध्यान तीरों पर नहीं था। ध्यान ना होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन से तीर निकले और उससे टकराने लगे थे। तीर नकली थे लेकिन उनके टकराने की वजह से दर्द होता था।
प्रियल घबराहट के मारे किसी भी डायरेक्शन से आने वाले तीर को नहीं रोक पा रही थी, जिसकी वजह से सभी तीर उससे टकराने लगे थे। इस वजह से वो मुश्किल में आ गई थी। निक ने ये देखा तो वो तुरंत मदद के लिए उसकी ओर बढ़ा था। निक पास पहुंचा और ढाल उसके हाथ से लेकर उसके फ्रंट में आ गया था, जहां वो हर डायरेक्शन से आने वाले तीरों का सामना करने लगा था। वहीं प्रियल उसकी पीठ के पीछे हो गई थी, जहां वो पूरी तरह से सेफ थी। तभी प्रियल का हेलमेट उसके सर से नीचे गिर गया था और उसके पूरे बाल बिखर गए थे। पहले वो लड़का लग रही थी, लेकिन अब वो लड़की लगने लगी थी, एक भोली और मासूम सी लड़की। एमा और निक दोनों का ध्यान एक साथ इन दृश्यों पर गया था। उन्होंने ये दृश्य देखे तो वे देखते ही रह गए थे। ये अलग ही तरह के दृश्य थे, जिसमें निक किसी हीरो की तरह तीरों का सामना करते हुए उस लड़की की जान बचा रहा था जो हीरोइन की तरह लग रही थी। सभी तीर के खत्म होने के बाद निक ने ढाल फेंका और पीछे की तरफ पलटा था। इधर वो पीछे पलटा, उधर प्रियल ने बाल संभालने के लिए अपने हाथ बालों में डाले थे। निक ने उसे देखा तो उसके दिल की धड़कन हल्की सी बढ़ गई थी। ऐसा उसके साथ आज से पहले पिछले कई सालों से कभी नहीं हुआ था, पिछले 7 सालों से तो कभी नहीं। वो प्रियल के चेहरे को, उसके बाल सही करने के तरीके को, इन सबको देखकर किसी और को ही याद करने लगा था, वो जिसे उसने अपना सब कुछ माना था, एली। वो अपनी पुरानी यादों में चला गया था। लगभग 7 साल पहले, हॉस्पिटल का एक रूम। हॉस्पिटल में एली अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तो वहीं निक और एमा उसके पास खड़े होकर बुरी तरह रो रहे थे। डॉक्टर्स चाहकर भी एली को बचा नहीं पा रहे थे। निक ने बड़ी ही बेचैनी से एली का हाथ पकड़ रखा था और वो वहीं बुरी तरह रो रहा था। निक ने रोते हुए कहा, एली एली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगी, तो अब तुम जा रही हो। प्लीज़ डोंट गो, मैं मर जाऊंगा एली। मैं रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना रहने के बारे में। प्लीज़ कुछ तो दया करो मुझ पर, मुझे मत छोड़कर जाओ। मुझे भी नहीं जीना, मैं भी मर जाऊंगा तुम्हारे साथ, एली बहुत धीमे स्वर में बोली। नो निक, मेरी बहनों की जिम्मेदारी है तुम पर, ज़ैन का भी तो सोचो, निक उसी वक्त बोला। तो जिम्मेदारी उठाएंगे ना हम, मिलकर उठाएंगे। प्लीज़ तुम हम सबके साथ रहो। आई प्रॉमिस मैं किसी से झगड़ा भी नहीं करूंगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, कोई जिद भी नहीं करूंगा। एमा भी रो रही थी। वो रोते हुए बोली, एली अगर तुम चली गई तो हम बिखर के रह जाएंगे। एक तुम ही थी जो हम सबको संभालती थी, अब तुम भी चली जाओगी तो फिर हमारा क्या काम है। प्लीज़ गॉड सेव हर, एली मत जाओ। निक और एमा बुरी तरह रो रहे थे। निक एली को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता था, वो बुरी तरह टूट गया था, उसने अपनी सारी सुध-बुध खो दी थी। वो कुछ देर तक वहीं रोता रहा, इसके बाद वो खड़ा हुआ और दीवार के पास जाकर रोने लगा। एली एमा से बोली, एमा तुम निक को जानती हो ना, वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। उसकी मॉम के जाने के बाद मैंने उसे कैसे संभाला था तुम अच्छे से जानती हो ना। अब मैं गई तो प्लीज़ तुम उसे संभाल लेना। हम लोगों का साथ तो यहीं तक था, मगर तुम आगे भी उसके साथ रहना है, तुम्हें उसकी केयर करनी है, एमा हल्के गुस्से में बोली। क्यों एली, क्यों गई तुम इस मिशन पर? जानती थी ना ये मिशन इतना खतरनाक है, पता था जान चली जाएगी, फिर भी गई तुम? एली और भी ज्यादा धीमे स्वर में बोली। होनी को कोई नहीं डाल सकता। इसके बाद उसकी सांस उखड़ने लगी, हार्टबीट कम होने लगी, जिससे मशीन में शोर होने लगा। निक उसकी तरफ मुड़ा और उसके पास पहुंचा, मगर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एली की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई और वो वहीं उसके चेहरे को देखता रह गया। उन दृश्यों के याद आते ही निक ने प्रियल को धक्का मारा और उसे दूर गिरा दिया था। उसे गिराने के बाद एक बार के लिए उसने प्रियल को गुस्से से देखा और फिर उसे वहीं छोड़ चला गया था। प्रियल ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे गिरने की वजह से चोट भी लग गई थी, मगर अभी उसका ध्यान सिर्फ निक पर था। वो निक को जाते हुए देख रही थी। निक उस ओर दूर गया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और तुरंत अपने रूम की ओर दौड़ी। वहां उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के पास बैठकर ही रोने लगी थी। तकरीबन 2 घंटे बाद निक किसी कब्रिस्तान में था। वो अपनी मीटिंग में नहीं गया था और पिछले 10 मिनट से एक कब्र के सामने बैठा था। कब्र के ऊपर एली वॉटसन का नाम लिखा था। निक की आंखों में आंसू थे। उसने कब्र को देखते हुए कहा, एली आई मिस यू,
मेरा ये दिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था, पर जब से तुम गई हो इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। आज ये हल्का सा धड़का तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा लाश के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। ये सांसें भी चल रही हैं तो बस अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभाने के लिए, तुम्हारी बहनें एमा, एवा और मेरे भाई जैन के लिए। आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर गई? एली, आई रियली रियली लव यू। इतना कहने के बाद वो भी जमीन पर झुककर रोने लगा।